सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं केवलनाणुजोय्य छद्दवमणिज्यं पवायिः णमिऊणजिणं वणिमो दौवणियोगं गणियसारम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी थी, जिसके कर्ता है भूतबली और पुष्पदंत आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार यह रचना की थी और यह उपदेश हमें भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह हम तीसरी पुस्तक में 32 पृष्ठ पर आए हैं। प्रश्न है आपका? पेज नंबर 29। क्या प्रश्न है? देखो देखो, आपका ऐसा प्रश्न है, यहाँ 29 पृष्ठ पर जो लिखा है कि काल 3 प्रकार का है, अनागत काल अर्थात भविष्य काल, वर्तमान काल एक समय और अतीत काल। इनमें से अतीत काल के द्वारा जो बीत चुका है उसके द्वारा, वो भी अनंत काल है, उसके द्वारा संपूर्ण जीव राशि का प्रमाण जाना जाता है। संपूर्ण जीव राशि के लिए भी कहेंगे ये जो अतीत काल के समय है उससे संपूर्ण जीव राशि इतने आगे गुणा है, तो उसके द्वारा मापा, ऐसा उसका अर्थ होता है। और उसके पहले पहले मिथ्या दृष्टि जीवों की राशि आएगी और बाद में संपूर्ण जीवों की राशि आएगी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि राशि में दूसरे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक जीव प्लस सिद्ध जीव मिला देंगे तो संपूर्ण जीव राशि आती है, ख्याल है ना? तो वो कौन सा वाला अनंत है वो बताने के लिए कहते हैं जो अतीत काल जो अब तक बीत गए अनादि से आज तक अनंत काल जो है वो, तो उन समयों की जो संख्या होगी, समयों की संख्या, खाली वो वर्षों में और सागरों में नहीं नापना, उसको समयों में नापना है, तो उन समयों के कंपैरिजन में जीव या मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं दोनों राशि, क्योंकि दोनों राशि भी उससे अनंत गुणे हैं, मिथ्या दृष्टि राशि भी अनंत गुणे और उससे आगे वो संपूर्ण जीव राशि है, इसलिए उसकी कंपैरिजन में, उसकी अपेक्षा, उसका उसके तुलना में मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रमाण बताने में आता है। अब यह हम 32 पृष्ठ पर आए हैं। कल हमने 16 अल्प बहुत्व देखे थे, कौन सी संख्या से कौन सी संख्या कितनी बड़ी है, कितनी गुणी है, वो हमने बहुत विस्तार से देखा था। उससे क्या पता चला? तो उससे ये बात हो गई कि अतीत काल से 31 पृष्ठ पर अंतिम लाइन देखो, अंत की 3 लाइन, ये 16 राशि हमने देखी ना, पहली राशि थी वर्तमान समय जो एक है, उससे अनंत गुणे हैं अभव्य राशि, कितने अनंत है तो जघन्य युक्तानंत प्रमाण है, तो अभव्य राशि से सिद्ध काल जो है वो अनंत गुणा है, सिद्ध काल से फिर सिद्ध जीवों की संख्या, फिर उसके आगे वाली संख्या असिद्ध काल, असिद्ध काल से आगे कौन सी देखी थी हमने, अतीत काल, और अतीत काल से भव्य मिथ्या दृष्टि जीव, अकेले मिथ्या दृष्टि लिए भव्य मिथ्या दृष्टि जीव, वो 7वें स्थान पर लिए थे। उसके बाद भव्य मिथ्या दृष्टियों से टोटल भव्य जीव कितने हैं, तो थोड़े ज्यादा है, क्योंकि उसमें हमने दूसरे गुणस्थान से 14वें तक के गुणस्थानों के जीवों की संख्या उसमें मिला दी थी। फिर 9वें स्थान पर सामान्य मिथ्या दृष्टि जीव, यानी टोटल भव्य जो जीव है, टोटल भव्य जीवों से सामान्य मिथ्या दृष्टि यानी भव्य प्लस अभव्य मिथ्या दृष्टि कितने ज्यादा है, तो जो टोटल भव्य है उसमें अभव्य मिला दो तो सामान्य मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। अब सामान्य मिथ्या दृष्टि से संसारी जीव विशेष अधिक है, तो कितने अधिक है, तो सामान्य मिथ्या दृष्टियों की जो संख्या है यानी पहले गुणस्थान वालों की, उसमें दूसरे गुणस्थान से लेकर सिद्ध तक, सॉरी चौदह गुणस्थान तक, अभी संसारी जीव पहले लेना है, बाद में वो टोटल जीव लेंगे तो वो फिर उसमें मिला देना, ख्याल है ना, वो कितने अधिक है वो बाकी हमने चर्चा की थी। तो संसारी जीव जितने हैं उससे संपूर्ण जीव विशेष अधिक है, तो संसारी में सिद्धों की संख्या मिला देना। तो यहां तक तो 11 स्थान तो जीव राशि के हमने देखे, तो जीव राशि से पुद्गल द्रव्यों की संख्या वो अनंत गुणे हैं, हमने देखा था ना, जीव राशि को जीव राशि से अनंत गुणा वाला जो गुणकार होगा उससे गुणा कर देना तो पुद्गल राशि आएगी। पुद्गल राशि के बाद वाला स्थान जो 13वें स्थान पर है तो अनागत काल है, वो अनंत गुणा है। पुद्गल में पुद्गलों की संख्या, एक एक पुद्गल परमाणु, परमाणु कहो उतने ही उसके प्रदेश होंगे, ख्याल है ना, पर वो कितनी अवगाहना कितनी जगह व्यापता है उसको नहीं लिए, नंबर ऑफ परमाणु, टोटल नंबर ऑफ परमाणु, उससे अनागत काल अनंत गुणा है और अनागत काल से संपूर्ण काल विशेष अधिक है, क्योंकि अनागत काल में अतीत काल मिला देना, जो अनागत काल से छोटा होता है हमेशा उसके अनंत वे भाग होता है, हमेशा जो प्रोपोर्शन है, जो काल बीत चुका है उससे अनंत गुणा काल अभी भविष्य में पड़ा है। तो ये संपूर्ण काल की बात हुई 14वें स्थान पर। 15वें स्थान पर संपूर्ण काल से अलोकाकाश अनंत गुणा है, अकेले अलोकाकाश को लिया, और अभी उसके बाद वाला स्थान जो संपूर्ण आकाश, तो वो थोड़ा ज्यादा है, लोकाकाश उसमें मिला दो तो उतनी संख्या संपूर्ण आकाश के प्रदेशों की हो जाएगी। आकाश अनंत गुणा का अर्थ होता है आकाश की संख्या तो एक है, अभी यहां आकाश के प्रदेश गिन रहे हैं, क्या है ना, पुद्गल में तो परमाणु गिन रहे थे, वहां तो प्रत्येक परमाणु एक एक प्रदेश ही होता है, और यहाँ आकाश अनंत है ऐसा कहेंगे, अनंत गुणा है उसका अर्थ होता है उसके प्रदेश अनंत गुणे। तो ये हमने 16 देखे थे। तो नीचे लिखता है कि इस अल्प बहुत्व से यह प्रतीत हो जाता है, यानी यह जान सकते हम कि अतीत काल से मिथ्यादृष्टि जीव अनंत गुणे हैं, अतः अतीत काल के संपूर्ण समय अपहृत हो जाते हैं, अपहृत हो जाते हैं बाद हो जाते हैं। हमने देखा ना, एक एक अतीत काल का एक एक समय लेना और उसके सामने एक एक मिथ्यादृष्टि जीव को गिनना, तो अतीत काल के समय समाप्त हो गए फिर भी वो मिथ्यादृष्टि जीव उसके द्वारा वो पूरे बाद नहीं हो सकते, परंतु मिथ्यादृष्टि जीव राशि अपहृत नहीं होती, यह बात सिद्ध हो जाती है। अब आगे, अब यहां से आज का विषय शुरू होता है। यहाँ पर काल की अपेक्षा प्रमाण किस लिए कहा गया है, तो पहले आपने अनंत की भाषा में बता दिया था, तो काल की अपेक्षा दोबारा फिर क्यों उसको आपने बताया, उसका समाधान, मोक्ष को जाने वाली जीवों की अपेक्षा संसारी जीव राशि का व्यय होने पर भी, क्या कहते हैं, संसारी जीव राशि आज जितनी है, अभी आज से मान लेते हैं 1,00,000 वर्ष के बाद संसारी जीव राशि कम होगी कि नहीं होगी, थोड़ी उसमें से कुछ घटेगा ना, ये मोक्ष चला जाएगा, तो ऐसा होने पर भी कि संसारी जीव राशि का व्यय होने पर भी मिथ्यादृष्टि जीव राशि का सर्वथा विच्छेद नहीं होता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर काल की अपेक्षा प्रमाण कहा गया है। काल की अपेक्षा जब जानते हैं तो हम जान सकते हैं कि उनकी वो व्यय कभी भी कितना भी उसमें से निकल जावे, परंतु ऐसी अनंत राशि है कि वो कभी भी उसका अंत नहीं होने वाला है, ऐसे अनंत है, अक्षय अनंत कहेंगे उसको। अब कहते क्षेत्र प्रमाण की अपेक्षा बताएंगे, ऊपर सूत्र पढ़ेंगे हम 4 नंबर का, खेतेण अनंता लोगा। हमने देखा था द्रव्य अपेक्षा से गणना इन्हें संख्या की गणना करते हैं, काल अपेक्षा की गणना करते तो उसमें समय कितने होते उसकी संख्या से हम किसी का प्रमाण बताते, जैसे मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रमाण काल की अपेक्षा बताया, अब यहाँ कहते हम क्षेत्र की अपेक्षा बताएंगे। जब क्षेत्र की अपेक्षा बताते हैं तब उतने क्षेत्र में जितने प्रदेश होंगे उन प्रदेशों को यहाँ हम गिनेंगे। चले तो चौथे सूत्र पर, क्षेत्र प्रमाण की अपेक्षा अनंत लोक प्रमाण मिथ्या दृष्टि जीव राशि का प्रमाण है। कितने हैं? अनंत लोक प्रमाण। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक मिथ्या दृष्टि जीव को बिठा दो तो ऐसे कितने लोग लगेंगे मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए? अनंत लोक। ख्याल है ना? क्योंकि एक लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश होते हैं और यहां तो अनंत लोक कहा, तो अनंत लोक की जितनी संख्या होगी प्रदेशों की उतने मिथ्या दृष्टि जीव है। देखो फिर से, देखो क्षेत्र प्रमाण की अपेक्षा अनंत लोक प्रमाण मिथ्या दृष्टि जीव राशि का प्रमाण है। फिर शंका, यहां पर क्षेत्र प्रमाण का उल्लंघन करके अल्पवर्णनीय भाव प्रमाण का प्ररूपण क्यों नहीं किया गया है? पहले हमने देखा था जिसको समझाने में अधिक टाइम लगे उसको बहुवर्णनीय कहते हैं और जो जल्दी समझ में आए उसको अल्पवर्णनीय, यानी थोड़ा वर्णन करने से वो समझ में आता है। तो काल का जो काल की अपेक्षा कथन करते हैं तो वो तो समझने में आसान है, क्षेत्र अपेक्षा जब वर्णन आता है तो उसको और विस्तार से समझाना पड़ता है कि लोक क्या है, राजू क्या है, वो असंख्य द्वीप समुद्र क्या है, उसके द्वारा पूरा लंबा चौड़ा समझाना पड़ता है। ख्याल है ना? तो यहाँ प्रश्न ऐसा पूछा था कि भाव प्रमाण को क्यों नहीं बताया, पहले क्षेत्र प्रमाण क्यों बता रहे हैं? तो यहाँ कहते हैं भाव प्रमाण और बहुवर्णनीय है, उसकी अपेक्षा क्षेत्र प्रमाण अल्पवर्णनीय है। देखो समाधान, क्षेत्र प्रमाण के प्ररूपण की अपेक्षा भाव प्रमाण का प्ररूपण अति विस्तृत है, इसलिए भाव प्रमाण का प्ररूपण पहले नहीं किया गया है। भाव प्रमाण का प्ररूपण अति विस्तृत है, आगे इसी का स्पष्टीकरण करते हैं। ज्ञान को भाव प्रमाण कहते हैं। अब भाव प्रमाण में कौन सा भाव लेना है तो ज्ञान की बात करेंगे, ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों में उसको समझाएंगे। वह भी पांच प्रकार का है। क्या पांच प्रकार का है? हाँ, ज्ञान पांच प्रकार के भेद है ना उसमें, उन पांच भेदों में भी प्रत्येक अनेक भेद रूप है। एक एक टाइप के जो ज्ञान है वे भी अनेक भेद रूप है, उसमें भी अनेक विवाद है। इससे सिद्ध होता है कि भाव प्रमाण का प्ररूपण क्षेत्र प्रमाण के प्ररूपण की अपेक्षा अति विस्तृत है, यानी भाव प्रमाण अति विस्तृत है, ये बात अपने ख्याल में आती है। शंका, क्षेत्र प्रमाण के द्वारा मिथ्या दृष्टि जीव राशि कैसे मापी अर्थात जानी जाती है, यानी कैसे मापी जाती है या कैसे जानी जाती है, उसका समाधान। जिस प्रकार प्रस्थ से जौ गेहूं आदि की राशि का माप किया जाता है उसी प्रकार लोक प्रमाण के द्वारा मिथ्या दृष्टि जीव राशि मापी अर्थात जानी जाती है। इस प्रकार लोक के द्वारा मिथ्या दृष्टि जीव राशि का माप करने पर वह अनंत लोक मात्र है। यहाँ पर इस विषय की उपयोगी गाथा दी जाती है। क्या कहना चाहते हैं? हमको अनाज मापना है, हम या तो वजन में किलो में मापेंगे या माप से मापते हैं ना। पहले तो ये माप से प्रस्थ है ना, वो माप आता था पहले, एक पायली दो पायली या शेर का माप आता था, कितने शेर हुआ तो वो उसके उसको भर देते थे हम प्रस्थ को, और वो एक हुआ दो हुआ तीन हुआ तो हम इतना कहते थे कितना है, तो चार पायली है। ख्याल है ना? पायली मालूम है? हाँ हाँ, कितने शेर का होता था? चार शेर की एक पायली, तो उसमें पायली में माप करते थे उसका, उसको प्रस्थ कहते हैं यहाँ पर। तो उसके द्वारा जैसे गेहूं आदि हम मापते थे या चावल मापते हैं, तो ऐसे यहाँ कहते एक लोक, दो लोक, चार लोक, तो ऐसे अनंत लोक मिथ्या दृष्टि जीवों को मापना है। तो एक लोक में जितने प्रदेश है उतनी संख्या लेना, यानी असंख्य जीवों का एक माप, ऐसे कितने बार करना पड़ेगा? अनंत बार। अब गाथा ऊपर हम पढ़ेंगे 22 नंबर की। पत्थेण को दवेण व जह कोई मिणिज सौ अभिजाइम एवं मिणिज माणे हवन्ति लोगा अनंतादु। यही बात यहाँ लिखी है ना, पत्थे ने प्रस्थ से कोदवेन, कोदवों को जिस तरह से नाप सकते, या अन्य भी जो कोई बीज हो गए, सर्व बीज ने सभी प्रकार के बीज उसके द्वारा मापे जाते हैं, मिणिज ने मापे जाते हैं, एवं मिणिज माने इस तरह से माप करने पर, कौन सा माप लेना है? लोक का। तो कितने लोग हो गए? हवंती लोगा अनंतादु, मिथ्या दृष्टि जीवों का इस तरह से माप निकालेंगे हम तो अनंत लोक होगा। देखो नीचे उसका अर्थ किया है, जिस प्रकार कोई प्रस्थ से कोदों के समान संपूर्ण बीजों का माप करता है, कोदो यानी वो तो है ना चावल जैसा है, उसके धान है, जैसे उसको मापते हैं वैसे गेहूं को भी माप सकते हैं, ज्वार को भी माप सकते हैं, बाजरा भी माप सकते हैं, तो संपूर्ण बीजों को माप सकते हैं। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव राशि की लोक से अर्थात लोक के प्रदेशों से तुलना करने पर, यानी लोक में जितने प्रदेश है उतना का एक माप, उसको हम एक लोक कहेंगे, तो उससे अगर हम उनकी संख्या को नापेंगे तो मिथ्या दृष्टि जीव राशि का प्रमाण लाने के लिए अनंत लोक होते हैं, अर्थात अनंत लोक प्रमाण मिथ्या दृष्टि जीव राशि है। शंका, प्रस्थ से बहिर्भूत पुरुष प्रस्थ से बहिर्भूत बीजों को प्रस्थ के द्वारा मापता है, क्या कहते हैं? हम प्रस्थ के द्वारा बीजों को मापते हैं तो प्रस्थ अलग है, जिस मापने वाला भिन्न है, बहिर्भूत यानी उससे भिन्न है ना, दूसरा है कोई मापने वाला पुरुष, दूसरा है तो वो भिन्न है, और जिसको मापना है वो बीज भी भिन्न है, यह तो युक्त है, ये तो समझ सकते हम। परंतु लोक के भीतर रहने वाला पुरुष लोक के भीतर रहने वाली मिथ्या दृष्टि जीव राशि को लोक के द्वारा कैसे माप सकता है? ये तो बच्चों का प्रश्न हुआ है ना, क्यों अश्विन भाई? हम कहाँ रहते हैं? लोक के भीतर, और हम किसको माप ले रहे हैं? लोक के भीतर वाले मिथ्या दृष्टि जीवों को, तो वो कैसे माप सकते हैं? और माप में कैसा, जो लोक है जो हमसे कितना बड़ा है, हमने पहले देख कहा था ये बुद्धि में करना है सारा समाधान। जिसलिए बुद्धि से संपूर्ण मिथ्या दृष्टि जीव लोक के द्वारा मापे जाते हैं, इसलिए उपर्युक्त दोष नहीं आता है, यानी हम बुद्धि के द्वारा ये सब कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, हमारी बुद्धि कितनी बड़ी है वो अनंत लोक से भी बड़ी होगी कि नहीं? शंका, बुद्धि से मिथ्या दृष्टि जीव कैसे मापे जाते हैं? समाधान, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक मिथ्या दृष्टि जीव को निक्षिप्त करके यानी रखकर एक लोक हो गया, इस प्रकार मन से संकल्प करना चाहिए। ये मन के द्वारा हम इमेजिन कर सकते हैं, उसी को कहते हैं बुद्धि के द्वारा। इस प्रकार पुनः पुनः माप करने पर मिथ्या दृष्टि जीव राशि अनंत लोक प्रमाण होती है। इस प्रकार बुद्धि से मिथ्या दृष्टि जीव राशि मापी जाती है। इस विषय की यहाँ पर उपसंहार रूप गाथा कहते हैं, ऊपर 23 नंबर की लिखी है गाथा, उसको देखते हैं। लोगागाज प्रदेशे एकेके निखिवे वितह दिठिम एवं गणिज्यमाणे हवन्ति लोगा अनंतादु। उसका अर्थ देखते हैं, नीचे लिखा देखो, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक मिथ्या दृष्टि जीव को निक्षिप्त करे, इस प्रकार पूर्वोक्त लोक प्रमाण के क्रम से गणना करते जाने पर अनंत लोक हो जाते हैं। पहले समझाया था, उसी को गाथा के रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। अब शंका पूछता है, लोक किसे कहना? पहले तो अनंत लोक है ये तो समझ लिया उसने, अभी कहते लोक किसे कहते हैं? तो उसका समाधान, जगत श्रेणी के घन को लोक कहते हैं, यानी जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी इज इक्वल टू लोक। अभी आगे का प्रश्न आपको ख्याल में आया होगा, जगत श्रेणी किसको कहते पूछेंगे, है ना? तो शंका, जगत श्रेणी किसे कहते हैं? उसका समाधान, सात रज्जु प्रमाण आकाश प्रदेशों को, प्रदेशों की लंबाई को जगत श्रेणी कहते हैं। और प्रदेशों को लंबाई को ऐसा हुआ है, दो प्रदेशों की लंबाई को, हाँ ऊपर लिखा ना, का सेरी सत्तर अज्जू में या मेत आयामो, उतनी लंबाई क्या कहते हैं? आकाश का एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, ऐसे कंटिन्यूअस एक लाइन में, जिसको एक पंक्ति कहते हैं, ऐसे गिनते जाओ तो सात राजू प्रमाण जो होता है उसको जगत श्रेणी कहेंगे। जगत श्रेणी ने पंक्ति, एक लाइन, एक लाइन में कितना लेना, सात राजू प्रमाण, तो सात राजू को जगत श्रेणी कहते हैं। यह पूछा ना, जगत श्रेणी किसे कहते हैं? सात रज्जू प्रमाण आकाश प्रदेशों की लंबाई को जगत श्रेणी कहते हैं। देखो वो छ हुआ है तो जगत त का छ हुआ, उसमें कुछ नहीं करना है, और श है ना उसका छ हो गया, तो श्र श्र है ना, श का छ हो जाता है, तो श्र का छ्र हो गया, जगत श्रेणी। एक व्याकरण के नियम होते हैं, किसका क्या होता है, एक लाइन में। अभी लोकाकाश का आकार आप सामने मत लाना, जब जगत श्रेणी कहते हैं तो सात राजू प्रमाण, सात राजू को जगत श्रेणी कहेंगे बस। यानी हम एक फुट किसको कहते हैं, 12 इंच को, तो ऐसा लेना क्या ऐसा लेना, वो प्रश्न ही नहीं होता, उसका वो माप है। 12 इंच का एक फुट होता है, ये माप उसका। वैसे जगत श्रेणी कितनी है, कितनी लंबी है, तो सात राजू। तो आकाश का ऐसे एक एक प्रदेश की ऐसी लंबाई तक गिनो ना, एक सिंगल लाइन देखो, प्रदेश की सिंगल लाइन लेना, तो उसको क्या कहेंगे हम, सात राजू होने पर जगत श्रेणी। हाँ अब आगे का प्रश्न, रज्जू किसे कहते हैं? क्योंकि सात राजू बता दिया ना, तो अभी पूछते हैं कि रज्जू किसे कहना, यानी राजू किसे कहना। समाधान, तिर्यक लोक के मध्यम विस्तार को रज्जू कहते हैं। देखो लोक के तीन भाग, एक ऊर्ध्व लोक, अधो लोक और मध्य लोक को या तिर्यक लोक को, वो कितना बड़ा है तिर्यक लोक, तो एक राजू प्रमाण है, एक राजू बाय सात राजू है ना वो बीच में। परंतु तिर्यक लोक बीच वाला जो सेंटर में एक राजू बाय एक राजू का है, जिसके त्रस नाली होती है, तो यहाँ रज्जू कितना है, तो कहते हैं तिर्यक लोक के मध्यम विस्तार को रज्जू कहते हैं। जो हम लोकाकाश ऊपर एक राजू, बीच में पांच राजू, फिर एक राजू, नीचे सात राजू देखते हैं, तो बीच वाला एक राजू है, उसको तिर्यक लोक एक राजू प्रमाण है कहते हैं उसको। शंका, तिर्यक लोक की चौड़ाई कैसे निकाली जाती है? तो तिर्यक लोक कितना बड़ा है कैसे निकालेंगे हम, कैसे समझेंगे? तो उसका समाधान, जितना द्वीपों और सागरों का प्रमाण है उनको, तथा एक अधिक जम्बू द्वीप के छेदों को विरलित करके, तथा उस विरलित राशि के प्रत्येक एक को दो रूप करके, परस्पर गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो उससे अर्धच्छेद करने के पश्चात अवशिष्ट राशि को गुणित करने कर देने पर रज्जू का प्रमाण उत्पन्न होता है। क्या हमने देखा कि एक द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप, एक समुद्र, और प्रत्येक दुगुना दुगुना क्षेत्र वाला है, तो उसका विस्तार कैसे निकालना है, तो उसके अर्धच्छेद करना। हमने पहले देखे थे अर्धच्छेद यानी दो से डिवाइड करते जाओ, कितने बार होगा उसको अर्धच्छेद करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जितना द्वीप और सागरों का प्रमाण है उस संख्या को, तथा एक अधिक जम्बू द्वीप के छेदों को विरलित करके, छेद कहो या अर्धच्छेद कहो एक ही बात है, एक अधिक जम्बू द्वीप के जितने अर्धच्छेद है प्लस वन, इतनी संख्या को विरलित कर देना, एक 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 करके लिखना, और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक को दो रूप करके, यानी प्रत्येक देय राशि अभी दो लिखना हर एक के ऊपर, दो 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 दो। पहले जब हम वही राशि लिखते थे देय में वर्गित संवर्गित के लिए, अभी क्या करना, जितने अर्धच्छेद है उतनी राशि विरलित कर दो, जितने जम द्वीप और सागर है प्लस जम्बू द्वीप के अर्धच्छेद प्लस वन, इतने विरलित कर देना। और उसमें क्या करना, एक एक को दो रूप करना, यानी हर एक के ऊपर दो दो संख्या लिखना और आपस में गुणा कर देना। तो जो राशि उत्पन्न हो उससे अर्धच्छेद करने के पश्चात अवशिष्ट राशि को गुणित कर देने पर रज्जु का प्रमाण उत्पन्न होता है। उसका विशेष अर्थ बाद में करेंगे, फिर देखते हैं। क्या देखो, हाँ टोटल द्वीप समुद्र कितने हैं, तो जितने असंख्यक हैं कितने हैं, सागरों में हमने गिने थे तो अढ़ाई अद्धा सागर है, यानी 25 कोड़ा कोड़ी पल्ले है, तो 25 कोड़ा कोड़ी पल्ले उनकी संख्या है, ख्याल है ना, संख्या यानी वो पल्लों के समय गिनो, अभी इतनी संख्या में द्वीप और सागर है, वो तो संख्या हुई। अब उसका क्षेत्र कितना व्यापा है, एक से दूसरा दुगुना 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 दुगुना, तो दुगुना दुगुना है तो उसमें दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना करते जाओ हर एक को, इसलिए ये सारा लंबा चौड़ा माप उन्होंने समझाया, ख्याल है। तो यहाँ कहते अथवा कितने ही आचार्यों के उपदेश से जितना द्वीपों और सागरों का प्रमाण है उसको और संख्यात अधिक जम्बू द्वीप के छेदों को विरलित करके, कोई कोई आचार्य ऐसा मानते हैं अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र के आगे भी कुछ और विस्तार है, और भी सागर और द्वीप है, तो उस विरलित राशि के प्रत्येक एक को दो रूप करके परस्पर गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो उससे छेद करने के पश्चात अवशिष्ट राशि को गुणा कर देने पर रज्जु का प्रमाण उत्पन्न होता है। यह जगत श्रेणी का सातवां भाग है। अभी इसी का विशेष अर्थ नीचे बता रहे हैं। देखो, रज्जु के विषय में दो मत पाए जाते हैं। कितने ही आचार्यों का ऐसा मत है कि स्वयंभू रमण समुद्र की बाह्य वेदिका पर, आउटर लिमिट पर जाकर रज्जु समाप्त होती है, तथा कितने ही आचार्यों का ऐसा मत है कि असंख्यात द्वीपों और समुद्रों की चौड़ाई से रुके हुए क्षेत्र से संख्यात गुणे योजन जाकर, यानी कुछ संख्यात योजन जाकर, इसलिए जम्बू द्वीप को संख्यात किया ना, जम्बू द्वीप 100,000 योजन है, तो संख्यात गुणे योजन ऐसा उस वहां का रज्जु की समाप्ति होती है। स्वयं वीरसेन स्वामी ने इस दूसरे मत को अधिक महत्व दिया है। उनका कहना है कि ज्योतिषियों के प्रमाण को लाने के लिए 256 अंगुल के वर्ग प्रमाण जो भागार बतलाया है उससे यही पता चलता है कि स्वयंभू रमण समुद्र से संख्यात गुणे योजन जाकर ही मध्यलोक की समाप्ति होती है। इन दोनों मतों के अनुसार रज्जु का प्रमाण निकालने के लिए रज्जु के जितने अर्धच्छेद हो, यानी एक राजू के जितने अर्धच्छेद है उसको उतने स्थान पर दो रखकर परस्पर गुणा करके जो लब्ध आवे, लब्ध यानी जो राशि आएगी, रज्जु के अर्धच्छेद निकालना ये आसान है। हमको क्या, हमको 16 संख्या निकालनी है, 16 कितनी है, तो 16 के जितने अर्धच्छेद है कितने हैं, 16 के अर्धच्छेद 4 है, तो 16 के अर्धच्छेद है उसको विललन कर दो और हरे को दो रूप करके आपस में गुणा कर दो। यही बात है ना, जो संख्या निकालनी है उसके अर्धच्छेदों को रखो आप और उतने बार दो दो संख्या लिखकर आपस में गुणा करो। किसी के अर्धच्छेद मालूम हो तो संख्या निकालना आसान है। हम कहते हैं किसी चीज के अर्धच्छेद 3 है तो संख्या कितनी होगी, 3 बार। उतने बार दो को आपस में गुणा करना है, आठ हो जाएगी ना, द्विरूप घनधारा की वर्गधारा की बात नहीं कर रहे हम, अर्धच्छेद के द्वारा संख्या निकालने की बात कर रहे हैं। अब जिसके अर्धच्छेद 16 है वो संख्या कौन सी होगी? हाँ, पन्नटी, बराबर है, क्योंकि 256 के अर्धच्छेद 8 देखे थे और पन्नटी के 16, तो पन्नटी संख्या कैसी है? तो उसके अर्धच्छेद को विरलन कर दो और हरेक को दो रूप करके आपस में गुणा कर दो, यानी दो संख्या को 16 बार रख कर आपस में गुणा कर दो, यानी दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना इसे 16 बार करो, तो कौन सी संख्या आएगी? तो पन्नटी आ जाएगी। क्या लेना? तो रज्जू का माप कैसा निकालना? तो रज्जू के अर्धच्छेदों को रख दो विरलन करके और आपस में गुणा करो, तो वो रज्जू का प्रमाण आएगा। तो अभी उसके अर्धच्छेद भी निकालने चाहिए, तो अर्धच्छेद कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए कहते हैं जितने द्वीप और सागरों का प्रमाण है उसमें जम्बू द्वीप के अर्धच्छेद प्लस एक मिला दो, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, नहीं नहीं वो यहाँ नहीं लेना, यहाँ हमको एक द्वीप एक सागर, एक द्वीप एक सागर ऐसे है। तो जितने द्वीप सागर है, हमने देखा था ना आउटर जो है उसकी कितनी एरिया है, उसमें तो आगे के सभी आ जाते हैं, तो उसका अर्धच्छेद यानी वो बाहर वाला जो थोड़ा डेढ़ उसमें ज़्यादा आता है ना, 1.5 लाख योजन हमने देखा था उसमें ज़्यादा आता है, ऐसा कुछ है उसमें, वो बातें आगे आएगी। हमें इतना ही समझना है जितने द्वीप सागर है उतने अर्धच्छेद रखो और आपस में गुणा करो, तो वो रज्जू का प्रमाण आएगा। अपने इतना ही सामान्य रूप से अभी याद रखो, उतने उतनी राशि उतनी जो संख्या है जितने द्वीप और सागर है, देखो फिर से यहाँ नीचे से पांचवी लाइन, रज्जू का प्रमाण निकालने के लिए मिला, नीचे से पांचवी लाइन पढ़ रही हूँ मैं, स्टार्टिंग से रज्जू का प्रमाण निकालने के लिए रज्जू के जितने अर्धच्छेद हो उतने स्थान पर दो रखकर परस्पर गुणा करके जो लब्ध आवे, लब्ध ने जो उसका गुणकार आएगा उसका अर्धच्छेद करने के अनंतर जो भाग अवशिष्ट रहे उससे गुणा कर देना चाहिए। इस प्रकार करने से रज्जू का प्रमाण आ जाता है। देखो जितने द्वीप और समुद्र है उनमें एक अधिक या संख्यात अधिक जम्बू द्वीप के अर्धच्छेद मिला देने पर रज्जू के अर्धच्छेद हो जाते हैं, यानी रज्जू के अर्धच्छेद कितने हैं? तो जितने द्वीप और समुद्र है उनमें एक अधिक करो, दो मत है ना, या तो एक अधिक करो या जम्बू द्वीप से संख्यात गुणा करो, उसके अर्धच्छेद मिला देने पर रज्जू के अर्धच्छेद हो जाते हैं। इनके निकालने की प्रक्रिया इस प्रकार है, ये फिर अभी हम यहाँ विस्तार से बताते हैं। मध्य से रज्जू के दो भाग करना चाहिए, यह प्रथम अर्धच्छेद है। रज्जू को एक बार हमने दो से डिवाइड करते हैं तो आधा रज्जू हो जाएगा, बराबर, ये प्रथम अर्धच्छेद है। अनंतर यानी उसके बाद आधा आधा करने से, अभी पहले मत की अपेक्षा वो बात कहेंगे, पहले समझाएंगे, आधा आधा करने से दूसरा अर्धच्छेद स्वयंभू रमण समुद्र में, तीसरा अर्धच्छेद स्वयंभू रमण द्वीप में। पहले हमने एक राजू का आधा किया तो मध्य पॉइंट से लेकर एक बाजू आधा रज्जू आया, उसका फिर आधा लिया तो स्वयंभू रमण समुद्र आया, उसका आधा किया तो स्वयंभू रमण द्वीप आया, उससे आधा किया तो उसके पहले वाला समुद्र होगा। हम उस पूरी टोटल की ओर से पहले बीच में आ रहे हैं ना, अभी आधा आधा करते, जैसे हम जम्बू द्वीप से गिनेंगे तो दो गुना दो गुना दो गुना हो रहा है, अभी हम अंत से शुरू करते हैं। हाँ वो तो पहला आधा करते, एक राजू का आधा करते ही आधा राजू आ जाएगा, उसका और आधा करेंगे तो सम्भ्रमण समुद्र, इस तरह से उसको उसके आधा 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 अभी गिन रहे हम। देखो दूसरा अर्धच्छेद स्वयंभूरमण समुद्र में, तीसरा अर्धच्छेद स्वयंभूरमण द्वीप ने, इस प्रकार एक एक अर्धच्छेद उत्तरोत्तर यानी आगे आगे के एक एक द्वीप और एक एक समुद्र में पड़ता है। ये बात यहाँ ख्याल में आई। किंतु लवण समुद्र में दो अर्धच्छेद पड़ेंगे, और उनमें से पहला 1.5 लाख योजन भीतर जाकर और दूसरा 50,000 योजन भीतर जाकर पड़ता है। इनमें से दूसरा अर्धच्छेद जम्बू द्वीप का मान लेने पर जितने द्वीप और समुद्र है उतने अर्धच्छेदों का प्रमाण आ जाता है। क्या कहते हैं? आधा 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 करते जाने पर जम्बू द्वीप का भी आधा ही आएगा ना, एक बाजू 50,000 है, दोनों मिलकर दोनों बाजू का मिलकर 1 लाख योजन है, और इसके आगे लवण समुद्र का कितना है? 2 लाख है, 2 लाख है ना इसके, तो 2 लाख में 1.5 लाख आधा 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 करते आए यहाँ तक, और यहाँ तो ये एक ये दोनों मिलकर 1 लाख है, तो लवण समुद्र में 2 पड़ते हैं, 1 लाख और 1 लाख और फिर 50। देखो यहाँ क्या कहते हैं, देखो किंतु लवण समुद्र में 2 अर्धच्छेद पड़ेंगे, उनमें पहला 1.5 लाख योजन भीतर जाकर और दूसरा 50,000 योजन भीतर जाकर पड़ता है। ये 1.5 लाख और 50,000, अच्छा इनमें से दूसरा अर्धच्छेद जम्बू द्वीप का मान लेने पर जितने द्वीप और समुद्र है उतने अर्धच्छेदों का प्रमाण आ जाता है। अंत में 50,000 योजन लवण समुद्र के और इतने ही योजन जम्बू द्वीप के अवशिष्ट रहते। अच्छा अच्छा उनका ऐसा कहना है, लवण समुद्र जो 2 लाख है ना, करते 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 आते हैं हम, तो अंतिम जो है वो तो लवण समुद्र 2 लाख वाला है, तो 2 लाख में उन्होंने कहा कि इसके 50,000 यहाँ से छोड़ देने और जम्बू द्वीप के 50,000 छोड़ देने। तो ये 2 लाख होगा और उसका आधा इसके 50 और इसके 50 मिलकर 1 लाख होगा अंतिम। पहले नहीं आएगा क्योंकि इसके पहले वाला तो 4 लाख था ना, 4 लाख फिर उसका 2 लाख। वो दोनों का मिलकर होगा 1। देखो इसको पढ़ते फिर ख्याल आएगा। देखो लवण समुद्र है 2 लाख वाला, तो 1.5 लाख का 1 और फिर अर्धच्छेद ना, अर्धच्छेद का अर्धच्छेद का अर्धच्छेद ऐसा आगे आगे आधा आधा होता जाएगा। देखो इसको पढ़ेंगे फिर पूरा। अंत में मिला ऊपर से 7वीं लाइन, अंत में 50,000 योजन लवण समुद्र के और इतने ही योजन जम्बू द्वीप के अवशिष्ट रहते हैं, यानी इनको छोड़ करके वाली आगे बात है। इनको मिला देने पर 1 लाख योजन होता है। इस 1 लाख योजन के 17 अर्धच्छेद करने पर 1 योजन अवशिष्ट रहता है। जिसके 19 अर्धच्छेद करने के बाद एक सुचंगुल शेष रहता है, क्या बात है? देखो ये बाहर से अर्ध, पहले एक राजू का अर्धच्छेद किया, फिर उसका अर्धच्छेद किया, फिर उसका अर्धच्छेद किया, फिर उसका अर्धच्छेद किया, ऐसे करते 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 अंदर तक आ गए, हाँ लवण समुद्र तक। तो उसमें दो अर्धच्छेद पड़े लवण समुद्र में, और लवण समुद्र के वो सब पूरे होने के बाद वो 50,000 और 50,000 मिलकर 1,00,000, अंतिम 1,00,000 लवण समुद्र के 50,000 और जम्बूद्वीप के 50,000। उसके आगे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो वो भी समझ लेंगे, आधा आधा करते वहां तक आ गए, ख्याल है ना। अब ये जो 1,00,000 योजन है उसके अर्धच्छेद करने हैं, तो 1,00,000 योजन के अर्धच्छेद कितने हो जाएंगे? देखो देखो थोड़ा हम कहेंगे ना, एकम दहम शतम सहस्र दश सहस्र लक्ष दश लक्ष 1,00,000 है, नहीं नहीं ये यहीं पर 1,00,000 बराबर। हमें इसके करीबन कोई संख्या मालूम है जिसके अर्धच्छेद हमको मालूम है? पनट्टी के कितने हैं? 16 है, 65,536 के, हाँ इसके अर्धच्छेद कितने हो गए? 16 हो गए, हाँ तो इसके इसके आगे वाला दुगुना नहीं, इसमें एक अर्धच्छेद मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको दुगुना करना पड़ेगा, इंटू तो करना पड़ेगा, तो उसमें एक अर्धच्छेद बढ़ जाएगा। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा देखो, इस प्रकार पहले में उसके संख्या में ये 17 अर्धच्छेद हो गए, और 17 अर्धच्छेद होने पर भी एक बाकी है, एक योजन रह गया, एक योजन रह गया उसमें। हाँ एक्चुअली अर्धच्छेद करने पड़ेंगे ना, तो उनका कहे इसको आधा आधा आधा, तो एक रहेगा, एक योजन बाकी रहेगा, एक योजन बाकी। वो सुचंगुल में किया उन्होंने, देखो देखो इसको पढ़ेंगे तो जितना हमें दिमाग में जाएगा उतना जाएगा। यहाँ क्या कहते हैं, 1,00,000 योजन के 17 अर्धच्छेद करने पर एक योजन अवशिष्ट रहता है, एक योजन कुछ बच गया उसका, जिसके 19 अर्धच्छेद करने के बाद एक सुचंगुल शेष रहता है। एक योजन को फिर आधा के आधा का आधा का आधा 19 बार किया तब एक सुचंगुल रह गया। हाँ, एक सुचंगुल रह गया। पल्ले के अर्धच्छेदों के वर्ग प्रमाण एक सुचंगुल के अर्धच्छेद होते हैं। अब ये सुचंगुल के अर्धच्छेद कितने होते हैं? हमने देखा था जिस स्थान पर पल्ले है, हम मान लेते हैं कि 16वें स्थान पर पल्ले है, वर्गशाला का उसकी 16 है, तो उसके आगे उतने ही 16 स्थान जाने पर सुचंगुल आता है। अभी पल्ले के अर्धच्छेद है, यहाँ क्या कहते हैं, पल्ले के अर्धच्छेदों के वर्ग प्रमाण सूचंगुल के अर्धच्छेद होते हैं। इस अभी इसको डबल 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 करेंगे ना, इसके अर्धच्छेद डबल 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 होते जाएंगे, तो ये 16वें स्थान पर है, तो वो डबल डबल 32 स्थान पर जाते जाते 16 का वर्ग हो जाए, ये उसका वर्ग होगा, इस यहाँ जो अर्धच्छेद है उसके वर्ग हो जाएंगे। 16 का वर्ग नहीं, देखो हम छोटी संख्या लेते हैं तो हमें याद ख्याल हो जाएगा, हम पनट्टी लेते हैं, पल्ले को भूल जाओ, पनट्टी है चौथे स्थान पर। 8वें स्थान पर क्या है? पनट्टी, बादल, इकट्ठी और इकट्ठी स्क्वायर। अभी अर्धच्छेद डबल हो जाए उसका स्क्वायर होता है कि नहीं देखेंगे। या अच्छा, उससे भी छोटा इस फिगर लेनी पड़ेगी अपनी, 4 से शुरू करते हैं। 4, 16, 256, 256, 256 ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे 256, 1, 2, 3, 4, पर एक का वर्ग नहीं गिन सकते ना, इसलिए 16 को ही लेना पड़ेगा। हाँ, अर्धच्छेद का स्क्वायर, ठीक है,
अर्धच्छेद का स्क्वायर हो गया तो उनका और उतना ही होगा जितना ऊपर की फिगर
है। अभी ये जो दूसरे स्थान पर 16 है, द्विरूप वर्गधारा में दूसरे स्थान पर 16 है और चौथे स्थान पर 12 है, जिस स्थान पर है उससे डबल स्थान जाने के बाद पनट्टी आती है, तो 16 के जो अर्धच्छेद है 4, उसका वर्ग करने पर पनट्टी के अर्धच्छेद आ जाएंगे। ऐसे वहां पल्ले के अर्धच्छेदों के वर्ग करने पर सूचंगुल के अर्धच्छेद आ जाएंगे, ख्याल है ना, क्योंकि वो उतने ही वर्ग स्थान आगे हैं। ये फॉर्मूला ख्याल में रखना
है।
अभी सबको लास्ट में मिलाना पड़ेगा, अभी जितने टोटल जो आएंगे, पहले तो लाखों में योजनों में थे, फिर एक योजन बचा, फिर योजन के भी अर्धच्छेद किए, एक योजन बचा ना उसके आधे का आधे का आधे करते रहो, तो पहले योजन के अर्धच्छेद इतने 19 किए उन्होंने, फिर सूचंगुल बचा, अभी उसके भी और अर्धच्छेद करने जा रहे। तो यहाँ क्या कहते, देखो 100,000 से हम फिर पढ़ेंगे बीच में ना, 100,000 योजन के 17 अर्धच्छेद करने पर एक योजन अवशिष्ट रहता है, जिसके 19 अर्धच्छेद करने के बाद एक सूचंगुल शेष रहता है। पल्ले के अर्धच्छेदों के वर्ग प्रमाण सूचंगुल के अर्धच्छेद होते हैं, ये तो उन्होंने स्टेटमेंट किया, फैक्ट बताई। इस प्रकार पहले मत के अनुसार जितने द्वीप और समुद्र है उनकी संख्या में 1+17+19 37 अर्धच्छेद अधिक पल्ले के अर्धच्छेदों के वर्ग प्रमाण अर्धच्छेद मिला देने पर रज्जु के कुल अर्धच्छेद होते हैं, यानी वो जो एक सूचंगुल बचा ना, तो सूचंगुल के अर्धच्छेद कितने होते हैं, तो पल्ले के अर्धच्छेदों के वर्ग प्रमाण होते हैं। तो इसमें कितने टोटल अर्धच्छेद हुए वो बता रहे, तथा दूसरे मत के अनुसार इस संख्या में संख्यात और मिला देने पर रज्जु के संपूर्ण अर्धच्छेद होते हैं, क्योंकि इस मत के अनुसार संख्यात अर्धच्छेद हो जाने के बाद स्वयंभू रमण समुद्र में अर्धच्छेद प्राप्त होता है। ये तो क्या दो मत है, उसमें हमें कोई उलझने की जरूरत नहीं है, ऐसे अलग अलग दो मत पाए जाते हैं, हमें कैसा निकालना रज्जु का माप, तो उसके अर्धच्छेद को रखना और हर एक के ऊपर दो 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 लिखना और आपस में गुणा करना, यानी अर्धच्छेद प्रमाण राशि को विरलन करना और देय राशि में दो 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 लिखना, और आपस में गुनाह करना तो रज्जू का प्रमाण आ जाएगा। ख्याल है? शंका, तिर्यक लोक का अंत कहां पर होता है? समाधान, तीनों वात वलयों से बाह्य भाग में तिर्यक लोक का अंत होता है, यानी वात वलय की अंतिम जो बॉर्डर है वही लोक की बॉर्डर है ना? शंका, यह कैसे जाना जाता है? लोक वात वलयों से प्रतिष्ठित है इस व्याख्या प्रज्ञप्ति के वचन से, व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का जो आगम है, हाँ पांचवा है, उसमें ऐसा वचन पाया जाता है कि जो लोक है वो वात वलयों से प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित यानी उससे युक्त है। वात वलय हमने क्या कहा, किसके आधार से है ये सारे छद्रव्य? तो वहाँ कहते लोक वात वलय उनसे ही आधार से, उसको और कोई अन्य आधार नहीं है, यानी उसके संपूर्ण ओर से, सभी ओर से, बाहर की ओर से तीन वात वलय उनसे लिपटा हुआ है। यह जाना जाता है कि तीनों वात वलयों के बाह्य भाग में लोक का अंत होता है। स्वयंभू रमण समुद्र की बाह्य वेदिका से उस ओर कितना स्थान जाकर तिर्यक लोक की समाप्ति होती है, ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि सब द्वीपों और समुद्रों के व्यास से जितने योजन रुके हुए हैं उनसे संख्यात गुणे असंख्यात योजन जाकर तिर्यक लोक की समाप्ति होती है। उनका कहना है द्वीप और समुद्रों का जो व्यास है, डायमीटर है, टोटल जो होगा उससे उसको संख्यात गुणा करना तो वो असंख्यात ही हो जाएगा। असंख्यात को संख्यात करेंगे, क्योंकि द्वीप समुद्रों की संख्या तो ये असंख्यात है, और ये असंख्यात योजन जो व्याप्त है उसको संख्यात गुणा करना, यानी असंख्यात योजन और जाने के बाद तिर्यक लोक की समाप्ति होती है। तो शंका, यह किससे जाना जाता है? यानी ये दो मत है ना, तो हम तो आज तक ऐसा ही पढ़ते और समझते आए हैं कि स्वयंभू रमण समुद्र अंतिम है और उसके चार कोनों में भूमि है, चतुष्कोण कहते हैं, क्योंकि ऐसे एक राजू बाय एक राजू क्या है, त्रसनाली ऊपर से देखते हैं तो, और स्वयंभू रमण समुद्र तो गोल है, तो ये चारों कोनों में भूमि है, चतुष्कोण कहते हैं इसको। एक योजन बाय एक योजन स्क्वायर है और उसमें हम एक योजन नहीं सॉरी एक राजू बाय एक राजू कहना था मुझे एक राजू बाय एक राजू में स्वयंभू रमण समुद्र ऐसा गोल होगा, उसके आउटर सूची देखेंगे तो एक राजू प्रमाण हम देखते हैं। तो ये चार कोण तो खाली रह जाएंगे ना, यहाँ तो समुद्र नहीं है तो यहाँ भूमि है। हाँ, भूमि में भी जीव है, वहां भी तिर्यंच रहते हैं। हाँ हाँ, तिर्यंच है, मनुष्य तो आड़ी द्वीप में ही है ना खाली। देखो अब यहाँ हम आगे पढ़ेंगे। तो यह ऐसा क्यों जाना, तो उसके लिए क्या दलील देते हैं उसको भी पढ़ेंगे हम। समाधान, ज्योतिषी देवों के 256 अंगुलों के वर्गमात्र भागहार के प्ररूपक सूत्र से, यानी ज्योतिषी देवों की संख्या या उसके जो विस्तार है वो निकालने के लिए जो 256 का 256 अंगुल के वर्ग का भागहार जो बताया है वो आगे आने वाली है बात, पहले भी हमने देखी है पर अभी भूल गए। उस सूत्र से और तिर्यक लोक में दो के वर्ग से लेकर उत्तरोत्तर दुना दुना है, इस त्रिलोक प्रज्ञप्ति के सूत्र से जाना जाता है कि असंख्यात द्वीपों और समुद्रों के व्यास से रुके हुए क्षेत्र से संख्यात गुणा जाकर तिर्यक लोक की समाप्ति होती है। और यह व्याख्यान जितने द्वीपों और सागरों की संख्या है और जम्बूद्वीप के रूपाधिक जितने छेद है उतने रज्जू के अर्धछेद है। अभी हमने तो देखा ना रज्जू के अर्धछेद कितने हैं, तो जितने द्वीपों और सागरों की संख्या है और जम्बू द्वीप के रूपाधिक जितने छेद है, तो रूपाधिक शब्द पर उनका वो बहस चलता है। रूप का अर्थ तो एक होता है, एक से अधिक अर्थ छेद ऐसा, परंतु रूपाधिक के रूप के लिए इन्होंने अलग अर्थ किया है। परिक्रम सूत्र के इस व्याख्यान के साथ भी विरोध को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वहां पर रूप से अधिक अर्थात एक से अधिक ऐसा ग्रहण न करके रूप से अधिक अर्थात बहुत प्रमाण से अधिक ऐसा ग्रहण किया है। अभी तक तो हमने गणित में रूप का अर्थ एक ही जाना था, अब यहाँ कहते एक से अधिक भी उसका अर्थ हो सकता है। यह व्याख्यान पूर्वाचार्यों के व्याख्यान के साथ विरोध को प्राप्त होता है, इसलिए व्याख्यान असंगत नहीं है, क्योंकि दूसरे व्याख्यान भाषों से इसके विरुद्ध पढ़ने पर भी यह व्याख्यान सम्यक रूप में अवस्थित है। ये दो मत चले आ रहे हैं आचार्यों की परंपरा से, तो इसलिए उसको ये खोटा है ये सच है ऐसी कोई उसमें हम तो निर्णय नहीं कर सकते, इसमें ख्याल है ना, क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का तो विषय है ही नहीं है, हम जो जान रहे वो आगम की परंपरा से ही जान रहे। तो यहाँ कहते हैं पूर्वाचार्यों का यह व्याख्यान व्याख्यानाभास है, यह कैसे जाना जाता है। समाधान, ज्योतिषियों के भागहार के प्ररूपक सूत्र से और चंद्र तथा सूर्य के बिंबों के प्रमाण के प्ररूपक त्रिलोक प्रज्ञप्ति के सूत्र से जाना जाता है कि पूर्वोक्त व्याख्यान के विरुद्ध जो पूर्वाचार्यों का व्याख्यान पाया जाता है वह व्याख्यानाभास है और सूत्र विरुद्ध व्याख्यान ठीक नहीं कहा जा सकता, अन्यथा अति प्रसंग दोष आ सकता है आ जाएगा, तथा वह पूर्वाचार्यों का व्याख्यान घटित भी तो नहीं होता है, क्योंकि उस व्याख्यान के अवलंबन करने पर जगत श्रेणी के सप्तम भाग का जो प्रमाण बतलाया है उसके अंत में 8 शून्य दिखाई देते हैं, परंतु जगत श्रेणी के सप्तम भाग रूप प्रमाण के अंत के 8 शून्य नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि अंत में 8 शून्यों के अस्तित्व का विधायक कोई सूत्र नहीं पाया जाता है। इसलिए रज्जु के प्रमाण के अंत में बतलाए हुए 8 शून्यों के नष्ट करने के लिए जो कुछ भी राशि हो वह अधिक ही होनी चाहिए, अधिक होती हुई भी वह राशि असंख्यात्वा भाग अधिक अथवा संख्यात्वा भाग अधिक तो हो नहीं सकती है, क्योंकि इस प्रकार के कथन की पुष्टि करने वाला कोई सूत्र नहीं पाया जाता है। इसलिए जितने क्षेत्र विस्तार को द्वीपों और समुद्रों ने रोक रखा है उससे संख्यात गुणा बाहरी अर्थात अंत के समुद्र से उस ओर का क्षेत्र होना चाहिए, अन्यथा पहले कहे गए सूत्रों के साथ विरोध का प्रसंग आ जाएगा। अब ये तो हमें पढ़ना ही है, इसमें कोई हम तो भाई ये जो अर्धच्छेद का प्रमाण आया है आगे भी स्वयं ब्रह्मण समुद्र के आगे भी है ऐसा इनका कहना है, वो अंतिम नहीं है ऐसा इनका कहना है। ये सब दलील किया है जो कुछ हमें, तो ये तो रीजनिंग पढ़ना ही है, इसमें तो हमें ये है कि वो है सच, ये तो ये अपना तो निर्णय नहीं हो सकता है, ख्याल है ना। उन्होंने भी वो वीरसेन आचार्य ने कौन सा सच है ऐसा उन्होंने भी अपना मत लिखा है। जो 1000 योजन का महामत्स्य है, 1000 योजन लंबा है ना उसकी, उसका पूरा आकार कितना है तो 12.5 करोड़ घने योजन हमने देखा था, 1000 बाय 500 और गुणा 250, तो 1000 योजन का महामत्स्य है वह वेदना समुद्घात से पीड़ित हुआ स्वयंभू रमण समुद्र के बाह्य तट पर कपोतलेशा अर्थात तनुवात वलय से लगता है। इस वेदना खंड के सूत्र के साथ पूर्वोक्त व्याख्यान विरोध को क्यों नहीं प्राप्त होता है, ऐसा किसी के पूछने पर क्या कहते हैं, जब किसी जीव को वेदना समुदात होता है तो वो प्रदेश आत्म प्रदेश कितना फैलते हैं, 3 गुना फैलते, तो यहाँ क्या कहते हैं वो 3 गुना फैलेंगे तो भी ऐसे फैलेंगे। हाँ स्वयंवरों में समझ फिर पढ़ती हूँ। जो 1000 योजन का महामत्स्य है वह वेदना समुद्घात से पीड़ित हुआ स्वयंभू रमण समुद्र के बाह्य तट पर कापोतलेशा अर्थात तनुवात वलय से लगता है। इसका क्या अर्थ होता है? जो मच्छो जोयन ऊपर का पढ़ रही हूँ मैं, जो मच्छो जोयन सहसियो स्वयंभू रमण समुद्रस बाहिरिल्लिये तड़े वेयन समुद्घायन समुहदो काउलेसियाए लग्गो। नीचे उसका अर्थ किया है नौवा नौवा श्लोक है नीचे के एकदम अंतिम लाइन काउलेसिया नाम तदियो वाद वलयो। काउलेसी का अर्थ उन्होंने वात वलय किया है। ठीक है तो फिर पढ़ती हूँ सेकंड लाइन। समुद्र के वो बाह्य तट पर कापोतलेशा अर्थात तनुवात वलय से लगता है इस वेदना खंड के सूत्र के साथ पूर्वोक्त व्याख्यान विरोध को क्यों नहीं प्राप्त होता है ऐसा किसी के पूछने पर आचार्य कहते हैं कि फिर भी इस कथन का पूर्वोक्त कथन के साथ विरोध नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर बाह्य तट इस पद से स्वयंभू रमण समुद्र की बाह्य वेदिका के परभाग में स्थित पृथ्वी का ग्रहण किया गया है। किसी ने पूछा वेदना समुदाय से पीड़ित है और उस बाह्य तट पर है तो वहाँ भी उसके आगे जो कुछ पृथ्वी है उसका ही ग्रहण करना चाहिए ऐसे इनका कहना है। किसी भी जीव को होता है वेदना समुद्घात कषाय वेदना से पीड़ित कोई भी जीव समुद्घात होता है उसका वेदना समुद्घात तो उसके प्रदेश वो 3 गुना तक फैल सकते हैं। किसी का 1-2-4 प्रदेश ही फैलेंगे जरूरी नहीं कि हर जीव 3 गुना बड़ा हो जावे अधिक से अधिक 3 गुना हो सकता है। शंका यदि ऐसा है तो महामत्स्य कपोतलेशा से संसक्त नहीं हो सकता है। समाधान ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि पृथ्वी स्थित प्रदेशों में अधस्तन वात वलय का अवस्थान रहता ही है। पृथ्वी स्थित प्रदेश अभी हम पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं तो वहाँ भी वात वलय का नीचे का पोर्शन है ही ना। पृथ्वी वात वलयों से घिरी हुई है दो पृथ्वियों के बीच में भी वात वलय पाया जाता है। अभी ये पूरी एक पृथ्वी है और दूसरी पृथ्वी है तो इन बिटवीन जो है अंतराल उसका उसमें भी वात वलय पाए जाते हैं। यानी यहाँ ये पृथ्वी है तो उसके लगता हुआ नीचे वाला वात वलय वहाँ होगा और बाहरी वात वलय बाहर होगा। तो यहाँ कहते कि पृथ्वी स्थित प्रदेशों में अधस्तन वात वलय का अवस्थान रहता ही है यानी वात वलय का नीचे का पोर्शन वहाँ रहता ही है। विशेषार्थ यहाँ ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए 38 पेज कि समुद्र की वेदिका और वात वलय के मध्य भाग में जो पृथ्वी है यानी समुद्र की वेदिका यानी आउटर लिमिट समुद्र के और इनका कहना आगे पृथ्वी भी है यानी यहाँ तक अभी समुद्र और आगे कुछ यहाँ पृथ्वी है और उसके बाद वात वलय है तो समुद्र की वेदिका और वात वलय के मध्य भाग में इन बिटवीन इन दोनों में जो पृथ्वी है वहाँ वात वलय की संभावना है और इसलिए महामत्स्य वेदना समुद्घात के समय उससे स्पर्श करता है। इसलिए स्वयंभू रमण की बाह्य वेदिका के उस ओर असंख्यात द्वीप और समुद्रों के व्यास से संख्यात गुणी पृथ्वी के सिद्ध हो जाने पर भी वेदना समुद्घात के पीड़ित हुआ महामत्स्य वात वलय से संसक्त होता है वेदना खंड के इस वचन के साथ उक्त कथन का कोई विरोध नहीं आता है। यानी वहाँ की पृथ्वी भी वात वलय से तो है ही लिपटी हुई इसलिए वहाँ भी ये कथन में कोई दोष नहीं ऐसा इनका कहना है। यद्यपि यह अर्थ पूर्वाचार्यों के संप्रदाय के विरुद्ध है तो भी आगम के आधार पर युक्ति के बल से हमने यानी वीरसेन आचार्य ने इस अर्थ का प्रतिपादन किया है इसलिए यह अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है। इस विकल्प का संग्रह यहाँ पर छोड़ना नहीं क्योंकि अतीन्द्रिय पदार्थों के विषय में छद्मस्थ जीवों के द्वारा कल्पित युक्तियों के विकल्प रहित निर्णय के लिए हेतुता नहीं पाई जाती है। ये जो कर्णानियों के विषय है उसमें ये कल्पित हमने उसमें कुछ युक्ति लगाए तो उसके द्वारा तो निर्णय नहीं हो सकता है। इसलिए उपदेश को प्राप्त करके इस विषय में विशेष निर्णय करना चाहिए। यानी ये उपदेश किसका होगा, अभी जो केवली भगवान होंगे या कोई अवधि ज्ञानी होंगे तो इस विषय में बता सकेंगे। अब आगे यहाँ पर क्षेत्र प्रमाण का प्ररूपण किस लिए किया है, ये तो अपने मूल बात तो रहेगी बाजू में। तो ये विषय चल रहा था कि मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं, कितने हैं क्षेत्र अपेक्षा, अनंत लोक प्रमाण, वहां से शुरू किया। तो लोक क्या है, तो जगत श्रेणी का वो घन है। तो जगत श्रेणी क्या है, तो सात राजू है। सात राजू क्या है, तो उसका सातवां भाग राजू कहलाता है। तो राजू क्या है, तो ये असंख्या द्वीप समुद्र जितने हैं, उस प्रमाण दो संख्या लिखकर आपस में गुणा करो, हाँ तो ये तो राजू वगैरह, ये सब बातें आ गई उसमें। अब फिर शंका, यहाँ पर क्षेत्र प्रमाण का प्ररूपण किस लिए किया है, उसका समाधान, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत लोक प्रमाण जीव राशि समा जाती है। क्या बात है, क्या कहा, लोकाकाश कितना है, असंख्यात प्रदेशी, और उसमें ये तो मिथ्या दृष्टियों की बात हो रही है, और उसमें जीव राशि कितनी समा जाती है, अनंत लोक प्रमाण जीव राशि उसमें समा जाती है। क्या है, असंख्यात प्रदेशों में अनंत लोक प्रमाण जीव राशि समा जाती है, और एक एक जीव कितने प्रदेशी है, वो भी असंख्यात प्रदेशी, और वो भी लोकाकाश प्रमाण असंख्यात है उसमें प्रदेश। क्या कहते हैं, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत लोक प्रमाण जीव राशि समा जाती है। इस बात के ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर क्षेत्र प्रमाण का प्ररूपण किया है। देखिए उसकी वो भी कैसी अवगाहना, जिसको कहते ना अवगाहना देते हैं, तो ये अवगाहना कितनी ही देता होगा और कैसे कैसे होते होंगे। एक जीव भी दूसरे जीव को अवगाहन देता है, एक पुद्गल भी जीव को देता है, चौ द्रव्य एक दूसरे को देते हैं ना, तभी तो लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेश है। अब इसमें जीव इतने हैं, पुद्गल तो हमने देखे, पुद्गल तो इससे कितने अनंत अनंत गुणे हैं, और सबको इतने ही असंख्यात प्रदेशों में सबको जगह दे दी उन्होंने। जो सब कुछ है वो सब है इसमें। देखो क्या कहते हैं, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत लोक प्रमाण जीव राशि समा जाती है। इस बात के ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर क्षेत्र प्रमाण का प्ररूपण किया है, अथवा आठ प्रकार के मानों में से लोकमान के द्वारा, कौन से आठ मान है, आठ मान में से लोकमान मालूम है, नहीं हाँ, उपमा मान, अच्छा पहले हमने देखा था संख्या, मूल में मान यानी मेजरमेंट, तो उसके दो भेद, संख्या मान और उपमा मान। तो संख्या मान में हमने संख्यात असंख्यात अनंत आदि भेद देखे, वो संख्या मान हुआ, संख्या में मापा हमने उसको, वे द्रव्य क्षेत्र काल माप वो सब हो गए उसी में। अभी इसमें हम उपमा मान अलग गिन रहे हैं, तो उपमा मान में हमने आठ भेद देखे थे। पल्य है, सागर है, सुचंगुल है, प्रतरांगुल है, घनांगुल है, जगत श्रेणी है, जगत प्रतर है, जगत लोक है, ये आठ हो गए। क्या लें फिर से, पल्य सुचंगुल तो बहुत बड़ा है, पल्य सागर सुचंगुल, सुचंगुल गुना सुचंगुल प्रतरांगुल, और उसको और एक बार सुचंगुल से गुणा करो तो घनांगुल हो ना, फिर अभी जगत श्रेणी, जगत श्रेणी का वर्ग करो तो जगत प्रतर, और जगत श्रेणी का घन करो तो लोक या जगत घन कहते उसको, इसको उपमा मान कहते, उपमा के द्वारा समझाए जाते हैं, उसमें से ये लोक है आठवां। आठवां है ना, आठवां स्थान हमने देखा था ना, पल्ले से शुरू करके लोक तक हमने समझाया। देखो यहाँ क्या कहते हैं, आठ प्रकार के मानों में से लोकमान के द्वारा जीवों की गणना करने पर इतने लोक हो जाते हैं, इस बात के ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर क्षेत्र प्रमाण का प्ररूपण किया है, बराबर। तो भी वे लोक कितने होते हैं ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि एक लोक का अर्थात एक लोक के जितने प्रदेश है उनका मिथ्यादृष्टि जीव राशि में भाग देने पर जितना जितनी संख्या लब्ध आवे तत्प्रमाण लोक होते हैं। यानी लोक के द्वारा मापा तो जितने मिथ्यादृष्टियों की संख्या है डिवाइडेड बाय एक लोक तो संख्या कितनी आएगी, तो अनंत आएगी। हमने देखा ना अनंत लोक होते हैं। हाँ अब पांचवें स्थान पर पांचवा सूत्र हम देख रहे हैं, भाव प्रमाण कहेंगे अभी। तिन्नम्पि अधिगमो भाव प्रमाणम, ये सबसे शॉर्ट में कर दिया। देखो पूर्वोक्त तीनों प्रमाणों का ज्ञान ही भाव प्रमाण है, ज्ञान को ही भाव कहते हैं। तो पहले पूर्वोक्त तीन प्रमाण, द्रव्य प्रमाण, काल प्रमाण और क्षेत्र प्रमाण को जो ज्ञान है वो भाव प्रमाण हो गया। देखो आगे इसका अर्थ करते हैं, अधिगम और ज्ञान प्रमाण ये दोनों एकार्थवाची शब्द है। अधिगम कहो या ज्ञान होना कहो, हम कहें ना इसका ज्ञान होगा अधिगम। अधिगम शब्द सुना है पहले कभी? हाँ, सम्यक दर्शन के भेद हमने देखे थे, निसर्गज और अधिगमज, ज यानी उससे उत्पन्न होने वाला, नैसर्गिक यानी बिना अधिगम के उत्पन्न होने वाला, और अधिगम से उत्पन्न, अधिगम यानी ज्ञान, ज्ञान यानी वहाँ किसी के उपदेश के द्वारा इसको ज्ञान हुआ और उसको सम्यक दर्शन हुआ, यानी इस भव में उसको देशना देने वाले कोई गुरु मिले तो हम उसको कहेंगे अधिगमज सम्यक दर्शन। हाँ हाँ, उसको उपदेश देने वाला सच्चे देवगुरु शास्त्र मिले, उसका खाली मिलने से नहीं होगा, वो देशना लब्धि उसको होना चाहिए, देशना के बिना देशना लब्धि नहीं होगी। देशना लब्धि तो जिस जीव ने देशना प्राप्त की उसके ज्ञान पर्याय का नाम देशना लब्धि, उसमें निमित्त रूप कौन है, वो देशना है, देशना देने वाले आचार्य है या कोई अन्य ज्ञानी है। तो इस भव में उसको ऐसे किसी ज्ञानी के द्वारा देशना मिली है तो उसको हम कहेंगे अधिगमज सम्यक दर्शन। और नैसर्गिक में उसको बिना देशना के होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि बिना देशना के किसी को भी तीन काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो वहां निमित्त पूर्व तीसरे भव तक की भी देशना उसको इस भव में निमित्त हो सकती है, देशना उसको पूर्व भव की भी यहाँ काम करती है, क्योंकि देशना तो मिली थी और अभी उस पर विचार चल रहा है उसका। वो पहला, दूसरा और तीसरा, वो भी संगी जी होना चाहिए वो सभी भव में, वो तो बहुत सारी बात है। अब यहाँ आगे देखते हैं, तो अधिगम और ज्ञान प्रमाण एक ही बात है, हा? वह अधिगम भी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान के भेद से पांच प्रकार का है, तथा उन पांचों में से प्रत्येक द्रव्य क्षेत्र और काल के भेद से तीन तीन प्रकार का है। यानी प्रत्येक जो ज्ञान है उसमें द्रव्य क्षेत्र और काल तीन तीन प्रकार बताए, उन तीनों में से द्रव्यों को विषय करने वाले ज्ञान को द्रव्य भाव प्रमाण कहते हैं। अभी हमने द्रव्य प्रमाणानुगम ऐसा देखा ना, संख्या, तो द्रव्य को विषय करने वाले ज्ञान को क्या कहेंगे, द्रव्य प्रमाण भाव, द्रव्य भाव प्रमाण ऐसा कहेंगे। क्षेत्र विशिष्ट द्रव्य के ज्ञान को क्षेत्र भाव प्रमाण कहते हैं। यानी हमने देखा कि अनंत लोक प्रमाण वो मिथ्यादृष्टि जीवों की संख्या होती है, ये हमने क्षेत्र की अपेक्षा वो ज्ञान किया, अभी हमें ज्ञान हुआ तो वो क्या हुआ, क्षेत्र भाव प्रमाण हुआ। इसी प्रकार काल भाव प्रमाण के विषय में भी जानना चाहिए, यानी हमने जो जाना कि क्या जाना, अतीत काल जो है पूरा अनंत काल है, उससे भी मिथ्यादृष्टि जीवों की संख्या अनंत गुणी है, तो ये हमने जाना तो ये हमारा क्या हुआ, काल भाव प्रमाण हुआ। शंका, सूत्र में भाव प्रमाण का स्वतंत्र कथन किस लिए नहीं किया है? समाधान, नहीं, क्योंकि उसकी बिना कहे ही सिद्धि हो जाती है। बिना कहने ये सब ज्ञान हुआ, वही तो भाव प्रमाण हुआ। दूसरे भाव प्रमाण के बिना शेष तीनों प्रमाण सिद्धि भी नहीं हो सकती है। यानी अगर हम ज्ञान ही नहीं करेंगे तो ये बातें किसने की सब? ये लिखा किसने? जिसने ज्ञान किया उसने तो लिखा है, जिसने ज्ञान किया उसने तो बताया। केवल ज्ञानी ने भी बताया, वो तो जानकर ही बताया, तो भाव प्रमाण के बिना ये कथन हुआ कैसे? ख्याल है? क्योंकि मुख्य प्रमाण के अभाव में गौण प्रमाण का होना असंभव है। यानी भाव प्रमाण ही मुख्य है, वही नहीं रहेगा, अभी ज्ञान ही नहीं होगा तो ये तो जानेगा कौन, कथन कौन करेगा? अथवा भाव प्रमाण बहुवर्णनीय है, अथवा हेतुवाद और अहेतुवाद को अवधारण करने में समर्थ शिष्यों का अभाव होने से सूत्र में स्वतंत्र रूप से भाव प्रमाण का कथन नहीं किया गया है। यानी ऐसे समर्थ शिष्य अभी नहीं रहे, वो हेतुवाद अहेतुवाद आदि को वो ग्रहण करें, इसलिए भी उसका वर्णन नहीं किया ऐसा कहते हैं। अथवा ये अलग अलग ऑप्शंस दे रहे, क्यों नहीं किया इसके? अथवा इस प्रकार भाव प्रमाण का कथन करना चाहिए, वही इस प्रकार है। अब ये स्वयं उसको बता रहे कि भाव प्रमाण का कथन कैसे होगा। मिथ्यादृष्टि जीव राशि का संपूर्ण पर्यायों में भाग देने पर जो लब्ध आवे उसे भागहार रूप से स्थापित करके, क्या कहते हैं, संपूर्ण पर्यायों में उसका भाग देना, जीव राशि से संपूर्ण पर्यायों को भाग देना, जो लब्ध आएगा उसे भागहार रूप से स्थापित करके संपूर्ण पर्यायों के ऊपर खंडित भाजित विरलित और अपहृत इनका कथन करना चाहिए। आगे उन्हीं चारों का स्पष्टीकरण करते हैं। हाँ, अभी उसको बताएंगे सब। सभी पर्याय हो जाएगी। हाँ, ये हम भाव प्रमाण आगे पढ़ेंगे ना तो उसका ख्याल में आएगा, आगे पढ़ेंगे। देखो, संपूर्ण पर्यायों के भागहार प्रमाण खंड करने पर जितने खंड आवे उनमें से एक खंड का जितना प्रमाण हो तन्मात्र मिथ्यादृष्टि जीव राशि होती है। देखो, हम मान लेते हैं ये संपूर्ण जो 100 है उसको मिथ्या दृष्टि के संख्या से भाग दिया तो 20 आए, 20 खंड आए, तो एक खंड की वैल्यू कितनी है? एक खंड की वैल्यू कितनी है? 20 खंड की है, 5 है। तो हमने देखा पर्यायों की संख्या को मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या से डिवाइड करने पर जितने खंड आए वो एक खंड का जो प्रमाण है उतने मिथ्या दृष्टि जीव है, उसी से तो हमने भाग दिया था। ख्याल है ना? जिससे भाग दिया था उसी को कहते उतने खंड प्रमाण। तो एक खंड हमने खंड उसी से किया था। किससे किए थे खंड? मिथ्या दृष्टि के प्रमाण से खंड किए थे। देखो फिर से, संपूर्ण पर्यायों के भागहार प्रमाण खंड करने पर जितने खंड आवे उनमें से एक खंड का जितना प्रमाण हो तन्मात्र मिथ्यादृष्टि जीव राशि होती है। इस प्रकार खंडित का वर्णन समाप्त हुआ। अब आगे क्या कहते हैं? भाजित, पूर्वोक्त भागहार का ही संपूर्ण पर्यायों में भाग देने पर जो भजन फल लब्ध आवे तत्प्रमाण मिथ्यादृष्टि जीव राशि होती है। अब ये जो पहले वाला भागहार का प्रमाण था उससे इसको भाग देंगे तो ये मिथ्यादृष्टियों का प्रमाण आया। ख्याल है ना? हाँ। इस प्रकार भाजित का वर्णन समाप्त हुआ। अब पूर्वोक्त भागहार को ही विरलित करके उस विरलित राशि के प्रत्येक एक के ऊपर संपूर्ण पर्यायों के समान खंड करके देय रूप से दे देने पर उनमें से बहुत खंडों को छोड़कर और एक खंड के ग्रहण करने पर मिथ्यादृष्टि जीव राशि का प्रमाण होता है। इस प्रकार विरलित का वर्णन समाप्त हुआ। वो अभी समझाएंगे कैसे, अनंत है ना ये सारा। जैसे हमने कह दे केवल ज्ञान कितना है, तो उसमें से ये सब माइनस कर दो और फिर उसमें मिला दो तो केवल ज्ञान हो गया। तो मिथ्या दृष्टि जीव राशि से खंडित करो तो एक खंड प्रमाण मिथ्या दृष्टि जीव राशि ऐसा। इसको पढ़ेंगे फिर। देखो उसी भागार को शलाका रूप से स्थापित करके संपूर्ण पर्यायों में से मिथ्यादृष्टि जीव राशि के प्रमाण को कम करना चाहिए। एक बार कम किया इसलिए शलाका राशि में से एक घटा देना। दूसरी बार मिथ्यादृष्टि जीव राशि के प्रमाण को शेष संपूर्ण पर्याय में से घटा देना चाहिए। दूसरी बार मिथ्यादृष्टि जीव राशि के प्रमाण को कम किया इसलिए शलाका राशि में से और एक कम कर देना चाहिए। इस प्रकार पुनः पुनः करने पर संपूर्ण पर्याय और उसी प्रकार शलाका राशि युगपत समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर संपूर्ण पर्यायों में से जितना प्रमाण एक बार घटाया तत् प्रमाण मिथ्यादृष्टि जीव राशि होती है। इस प्रकार अपहृत का कथन समाप्त हुआ। यहाँ ये राशि 100 है और हमने मिथ्यादृष्टि का प्रमाण 5 यहाँ लिया था और शलाका हमारी 20 है। तो एक बार माइनस 5 किए 95 रहे, यहाँ 20 के बदले 19 कर देना। दूसरी बार 5 घटाओ 90 रह गए, यहाँ 18 कर देना। वही तो है। अलग अलग उसको समझाने का तरीका अलग अलग, इसको कहते हैं उसको वो शलाका उसमें से अपहृत करते जाना। ये कितनी बार उसमें से वो संपूर्ण पर्याय से मिथ्यादृष्टि राशि कितनी बार वो माइनस हो जाएगी उसमें से, वो शलाका जितनी स्थापित है। शलाका कितनी है क्योंकि संपूर्ण पर्याय को हमने मिथ्यादृष्टि राशि से भाग दिया था तभी तो शलाका आई थी। तो जितनी शलाका है ना वो भागाकार जितना आया था उतनी बार हम उसको मिथ्यादृष्टि राशि को पर्याय में से माइनस करते जाओ तो जितनी शलाका है उसमें से एक एक कमते करते जाओ तो वो सब उतनी बार उसमें से माइनस हो जाएगी। समझाने के लिए खंडित भाजित विरलित और अपहृत किया है, एक ही बात है। उसको अलग अलग तरीके से उसको समझाया है। अब आगे मिथ्यादृष्टि जीवों की राशि के विषय में श्रोताओं को निश्चय उत्पन्न करने के लिए वर्ग स्थान में खंडित भाजित विरलित अपहृत प्रमाण कारण निरुक्ति और विकल्प के द्वारा मिथ्यादृष्टि जीव राशि का प्रमाण बतलाते हैं। शंका, वर्ग स्थान में खंडित आदि के द्वारा मिथ्यादृष्टि जीव राशि के प्रमाण का प्ररूपक सूत्र नहीं होने पर इसका कथन क्यों किया जा रहा है? सूत्र में तो ऐसी कोई बात नहीं है तो आप क्यों बता रहे हैं? समाधान, सूत्र से सूचित होने के कारण इसका कथन किया है जो इस प्रकार है। सिद्ध और सासादन सम्यक दृष्टि आदि 13 गुणस्थान वर्ती जीव राशि, क्या कहेंगे? सिद्ध प्लस दूसरे से 14 गुणस्थान तक के जीव, किसको छोड़ा सब में से? मिथ्या दृष्टि। संपूर्ण जीव राशि में से सिद्ध प्लस दूसरे से 14 तक के जीव, इतने बाद करेंगे तो मिथ्या दृष्टियों की संख्या आएगी। तो उस क्या कहते हैं, सिद्ध और सासादन सम्य दृष्टि आदि 13 गुणस्थान वर्ती जीव राशि को तथा सिद्ध और 13 गुणस्थान वर्ती जीव राशि के वर्ग में मिथ्यादृष्टि जीव राशि के प्रमाण का भाग देने पर जो लब्ध आवे उसको संपूर्ण जीव राशि में मिला देने पर जितना प्रमाण हो उसकी ध्रुव राशि ऐसी संज्ञा करके स्थापित कर देना चाहिए। अभी जो हमने पहले देखा था ना कि संपूर्ण जीव राशि को 16 मानते हैं, उसमें दूसरे गुण स्थान से सिद्धों तक सभी जो जी है वो तीन, उसकी संख्या है 3 और बाकी जो है वो 13 सभी हा? तो यहाँ कहते क्या कहते हैं ये उदाहरण से नीचे समझाया है और बाद में अंक गणित से समझाएंगे। यहाँ देखो इसको पढ़ते हैं, जीव राशि अ प्लस ब सिद्ध 13 गुणस्थान मानती राशि अ, उसमें से सिद्ध प्लस 13 गुण यानी दूसरे गुणस्थान से लेकर सिद्धों तक के सभी जीव कितने हैं तो अ इतने हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव राशि कितनी है ब, तो संपूर्ण जीव राशि कितनी होगी अ प्लस ब बराबर। इन संकेतों से पूर्वोक्त रीति के अनुसार ध्रुव राशि निम्न प्रकार आती है। वहां उन्होंने क्या बताया था पहले देखो, सिद्ध और सम्यक दृष्टि 13 गुणस्थानवर्ती जीव राशि को यानी अ को और सिद्ध और 13 गुणस्थानवर्ती जीव राशि के वर्ग में मिथ्या दृष्टि जीव राशि के प्रमाण का भाग देने पर जो लब्ध आवे क्या कहते हैं, अ में अ वर्ग का डिवाइडेड बाय ब भाग देने पर जो लब्ध आवे उसको संपूर्ण जीव राशि में मिला देने पर, संपूर्ण जीव राशि कितने अ प्लस ब है तो अ प्लस ब उसमें मिला देने पर जितना प्रमाण हो उसकी ध्रुव राशि ऐसा संज्ञा करके, उसको हम ध्रुव राशि कहेंगे, ये जो संख्या आएगी उसको ध्रुव राशि कहेंगे। तो वो राशि कितने आती है तो ये जो है ना अ वर्ग प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा देखो इसको सुलझाना है तो क्या करेंगे, ये तो ऑर्डिनरी गणित है। अब हम यहाँ लिखेंगे अ वर्ग डिवाइडेड बाय ब है यहाँ, वो बाद में हम ऐड करेंगे, अ प्लस अ दो अ हो जाएगी और यहाँ ब, अभी समान छेद करना पड़ेगा तभी ऐड कर सकते हैं हम, तो ब से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ ब से मल्टीप्लाई करो नीचे भी और ऊपर भी और यहाँ भी नीचे भी और ऊपर भी, तो ये ब का वर्ग होगा यानी अपना फॉर्मूला अ वर्ग प्लस टू अब प्लस ब वर्ग डिवाइडेड बाय ब ब ब। तो जिसने गणित सीखा है उसको मालूम है अ प्लस ब इसका वर्ग करेंगे तो ये आता है जो यहाँ लिखा है अ वर्ग प्लस टू अब प्लस ब वर्ग, ये 8वीं 9वीं में हम कुछ सीखे थे क्या है ना, इसी का ये फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है उसका, हाँ डिवाइडेड बाय ब, ये ऊपर का जो है ना इसका शॉर्ट क्या होता है अ प्लस ब का वर्ग ही, ये इतना आता है तो डिवाइडेड बाय ब, ये ध्रुव राशि है। और अंक गणित से निकालेंगे तो 3 क्या है ये सिद्ध प्लस वो राशि, फिर उसका वर्ग डिवाइडेड बाय मिथ्या दृष्टि जीवों की राशि प्लस टोटल जीव राशि 16 इज इक्वल टू जो टोटल आई है 256 डिवाइडेड बाय 13, ये ध्रुव राशि है। अब ये ध्रुव राशि का आगे क्या समझा रहे हैं वो हम कल देखेंगे, इसको देखकर फिर आगे बढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देतो।